इतना लंबा चौड़ा भगवान का वो दिव्य रूप, रात और दिन उनके पलकों में आ गए, छाया सुमृत्यम उनकी छायाओं में मृत्यु आकर बैठ गया, हंसने में माया आकर बैठ गई, सारा का सारा संसार उनके में आ गया। तब एक पैर से पृथ्वी और दूसरे पैर को स्वर्ग से, दूसरे पैर से स्वर्ग को नाप लिया। अब स्वर्ग पर गया तो वो चरण भी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बढ़ते 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 ठेठ ऊपर ब्रह्मांड के किनारे तक उनका जाकर अंगूठा अड़ गया, और अंगूठे के अड़ जाने के बाद बाहर का वो जल था वो जल आया, तत्काल कमंडल में ब्रह्मा जी ने ले लिया और उसी जल से भगवान के चरणों को धोया है और लिया है। वेद उपवेद ये भी देखने लगे कि भगवान के इस रूप का हम साक्षात दर्शन करें, तो वे मूर्तिमान होकर ब्रह्मलोक में चले गए थे, उन सब ने जाकर भगवान का चरणों दख लिया, चरणों का जल लेकर के सब कृतार्थ हो गए और ब्रह्मा आदि सब बड़े प्रसन्न हो गए। देवता वगैरह दुंधविया बजाने लगे, फूलों की वर्षा किए और जामवंत जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। जवानी थी उस समय में, रामावतार के समय में तो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा थे और उस समय बड़े जवान थे। वामन भगवान के समय में भेरी शब्द मनोजब है, उन्होंने भेरी करके सब जगह अरे अरे सुनो सुनो सुनो, अब भगवान ने इतना रूप बनाया कि बलि को उन्होंने जीत लिया है, ऐसे करके सब जगह वो गए और भगवान की परिक्रमा की है। महोत्सवम अघोषयत, इन महान उत्सव की घोषणा कर दी जामवंत जी ने। महिम सर्वम, जब देखा सारी पृथ्वी हाथ से चलेगी, स्वर्गवादी चले गए, तो कुछ राक्षसों की बुद्धि खराब थी, शस्त्र लेकर के आएगा हम तो विष्णु से लड़ेंगे, तो उनको समझाते हुए बलि ने कहा कि लड़ोगे क्या तुम, करोगे क्या, अब कहां लड़ोगे तुम, यहां तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा, चुप रहो चुपचाप, हमारा अब समय नहीं है, इन्हीं की कृपा से हम जीते थे, इन्हीं की कृपा से हम हारे हैं, ये सब कुछ ही कराने वाले हैं, यदि तुम्हारा भाग्य अच्छा हो तो बाबा इतना लंबा चौड़ा पैर है, इस पैरों में क्यों नहीं पड़ जाते, लड़ते क्या हो तुम, इतना बड़ा पैर भी तुमको नहीं दिखता है। सब के सब शांत हो गए। अब भगवान ने कहा कि भाई दो चरण तो हमने कर लिए, तीसरा चरण हमको मिला नहीं असुर, बताओ। उसी समय में भगवान ने आज्ञा दी गरुड़ जी को, गरुड़ जी को आज्ञा दी तो वे नागपात से उनको बांध लिए, वह बलि राजा को बांध लिया, बांध लिया, सब हाय हाय करने लग गए। फिर भगवान ने कहा कि राजन तुमने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के अनुसार दो बातों की पूर्ति हुई है, एक चरण तो हमारा कहीं अब रखने की जगह नहीं मिले, तुमको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा पूरी नहीं की और उसका तो फल नरक ही है। तो बलि ने कहा महाराज यदि मैं इतने बड़े त्रिलोकी का सम्राट हूं और वो सब आपके अधीन हो गया तो मैं भी तो अपनी जगह कुछ होऊंगा। तीसरा चरण महाराज आपने अभी मेरे सिर पर नहीं रखा है, अभी तो मेरे सिर पर आपके चरणों का जल ही आया है, तो आपका सिर और रख दो, तीसरे चरण की यह स्थिति है, मैं अपने वचनों को सत्य करूंगा, मुझे नरक का डर मत दिखाओ, मुझे नागपाशों में बांध लिया इसका भी डर मत दिखाओ, हाँ मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरे जवान से झूठी बात न निकल जाए, हम हमारे इस वंश को बहुत पवित्र मानते हैं, खासकर मैं अपने आप को तो बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि आप हमको दंड दे तो रहे हैं। धन्य है वे प्राणी संसार में जिनको माता पिता बहुत लंबे समय तक मिले, जिनके माता पिता जीवित रहते हैं और बेटों की गलती के ऊपर भी वे फटकारते रहते हैं। यमन माता पिता भ्राता श्रदिष्ठा दिशंति, फूट गए उनके भाग्य कि जिनके माँ बाप उनको शिक्षा नहीं देते इस डर से कि बेटा नाराज हो जाएगा कुछ मत कहो, बेटा नाराज हो जाएगा कुछ मत कहो, ऐसे जो बेटे से डरते हैं माता पिता, ऐसे बेटों का भाग्य फूट गया है। हमारा भाग्य बड़ा श्रेष्ठ है, हमारी गलती को आपने देखा और हमारे सुधार के लिए आपने हमारे से शासन ले लिया, बड़ा अच्छा किया है। यस्मिन वैरानुबंधे न रूढ़े न विबुधे तरा, हम क्या बतावें, आपके अंदर बैर भाव रख करके भी हमारे बहुत से असुरों ने बहुत उत्तम गति प्राप्त कर ली है और हम लोग एक राज्य के लिए लड़ते हैं झगड़ते हैं, बड़ा अच्छा किया आपने ये राज्य ले लिया। हमारे पितामह ने एक भक्ति का मार्ग यहाँ पर खोला है, उन्होंने विचार किया कि शरीर तो एक दिन मरेगा, इस मरने वाले शरीर से हमको जल्दी से जल्दी अपना काम बना लेना चाहिए, ऐसा सोचकर कहीं पर भी आसक्ति नहीं की, पिता से भी नहीं डरे, हम उस प्रह्लाद के वंश में होने वाले हैं महाराज, इसलिए आज आपके चरण कमलों को हम प्राप्त किए हैं, तो महाराज हमारा सारा का सारा दुर्भाग्य था वो समाप्त हो गया, सद्भाग्य तो आज ही पैदा हुआ है। इदम कृतांतान तिकवार्ती जीवितम, यदि आप हमसे शासन नहीं लेते तो हमसे यमराज ले लेता, कोई इनको तो लेता ही हमसे शासन, हमारे पास शासन तो रहने वाला था नहीं, आपने आया और आपने ले लिया, कितना कितना हमको सौभाग्यवान कर दिया है। इतने में ही प्रहलाद जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। जो ही प्रहलाद जी महाराज प्रकट हुए तो प्रहलाद जी महाराज को अब वो बलि राजा क्या करे, हाथ पैर तो बांधे हुए बिचारे, यूं उसने सिर झुका के प्रणाम किया। प्रहलाद को प्रणाम किया तो प्रहलाद जी महाराज ने इधर भगवान को भी प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके प्रहलाद जी ने कहा, वाह महाराज, आपको देना भी खूब अच्छी तरह से आता है और लेना भी खूब अच्छी तरह से आता है, तो यही व दत्तम। इस बिचारे बलि के पास ऐसी क्या ताकत थी कि जो यज्ञ से अपना राज्य ले ले, आपने तो इनको दिया, और जब ये घमंडी हो गए तो आपने ये वापस ले लिया। बड़ी कृपा की महाराज, देने में वो कृपा नहीं थी महाराज जितनी लेने में कृपा है। देने में आप अवतार लेकर के नहीं दिए हैं, लेने में महाराज देखो वामन बने हैं, छोटे बने हैं, कहां जन्म लिए हैं, कहां आए हैं। एक बलि का उद्धार होगा, नहीं नहीं इस कथा को जो सुनेगा उन सबका उद्धार हो जाएगा। तो लेने में आपने बड़ी कृपा की है। विभ्रंशितो या श्री आत्म मोहनाथ, महाराज बड़े बड़े विद्वान पुरुष थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं, उनमें भी उनके मोह पैदा हो जाता है। ये तो बेचारा असुर कुल में पैदा हुआ है और इतना बड़ा इसको ये राज्य मिल गया, तो क्यों नहीं इसको घमंड होता, बड़ा अच्छा किया आपने ये सारी संपत्ति ले ली, बड़ी कृपा की। हे नारायण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। इस प्रकार प्रहलाद जी प्रणाम करने लगे। इतने में विंध्यावली जी आई, विंध्यावली हाथ जोड़ के कहने लगे कि महाराज ये सारा संसार तो आपके खेलने की जगह है, आप खिलाड़ी के समान खेलते हैं, जीवों को खिलाड़ी बना बना करके और इनको आप प्रेम दिया करते हैं, तो महाराज ये लोग बड़े झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान सब भगवान में कर्तृत्व है, भगवान में भोक्तृत्व है, आप कर्ता भोक्ता से ऊपर उठे हुए हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज ऐसा मत करो, बेचारे को नागपास में आपने बांध लिया है, ऐसा मत करो, आप ही ने तो इसको बेचारे को राजा बनाया और आप ही इससे छीन रहे हो, ऐसा मत करो। इसने बेचारे ने बलि ने आपके साथ क्या काम किया, कौन सा गलत काम किया है, आपके चरणों में बिना किसी कपट भाव से इसने राज्य अर्पित कर दिया, आपके सामने कोई जल भी अर्पित कर देता है, एक धूप भी अर्पित कर देता है, प्रेम से करता है, आप उसको महाराज उत्तम गति देते हो, बैकुंठ देते हो, और बिचारे बलि ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ किया और जो मांगा सो दे दिया, और गुरु जी के द्वारा मना करने पर भी ये देनेपन से हटा नहीं, इसको आप नीचे का लोक देते हो और इसको आप बैकुंठ नहीं दे रहे हो, ये क्या बात है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी हमारी गति को आप लोग जानते नहीं हो, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसका जहां घमंड होता है उस चीज को पहले हटाता हूं ताकि वो घमंड न करे। मनुष्य कहां घमंड करता है, एक तो जाति में घमंड करता है, एक अपने कर्मों में घमंड कर लेता है, एक अपने अवस्था में घमंड कर लेता है, एक अपने रूप में, एक विद्या में, एक ऐश्वर्य में, धन में, इन चीजों में बहुत घमंड करता है, तो मैं घमंड वाली जगह उसकी हटा देता हूं। अरे सद्वैद्य होता है, सच्चिकित्सक होता है, तो जहां हमारे शरीर में फोड़ा फुंसी है वहां ही चीरा लगाएगा, दूसरी जगह थोड़ी लगाएगा, और उस फोड़े फुंसी को मवाद को वो दूर करता है। ऐसी जो जहां घमंड करता है हमको वो चीज अच्छी नहीं लगती है, हम उसके घमंड को दूर किया करते हैं। और ब्रह्मा जी आप तो कहते हो कि बलि को आपने कैद कर लिया, मैं कह रहा हूं बलि ने मुझे कैद कर लिया, अब ये बलि पाताल के अंदर जाएगा, सुतल में जाएगा, तो ये वहां रहेगा और हरदम ये मेरा वहां दर्शन करेगा और मैं इसका हरदम पहरेदार होकर के रहूंगा, तो पराजित मैं हुआ कि ये हुआ, इसने मुझे खरीदा कि मैंने इसको खरीदा। सावरणंते सावरणेर अंतरस्यायम भवितेंद्रो मदाश्रय, और सावरणी मनमंत्र का जब राज्य होगा तब जाकर के इंद्र बनेगा, इतना ये सुतल में रहेगा और सुतल में ये मेरा दर्शन करेगा, सुतल में कोई आदि व्याधि नहीं रहेगी, ऐसे लोक में ये पहुंचा है। और प्रहलाद तुम भी इनके साथ में जाओ और अपने पौत्र के पास में रहो और इसके पास में रहो और सबको मेरी भक्ति की कथा सुनाओ, तुम भी वहां निरंतर मेरे दर्शन करो, ये भी मेरे दर्शन करता रहेगा। प्रहलाद जी कहने लगे, महाराज आप पूछ के आओ ब्रह्मा जी से कि ऐसी कृपा ब्रह्मा को भी मिली है क्या। नेमम निरंच है, ब्रह्मा को भी ऐसी आपने कृपा नहीं दी, शंकर को भी नहीं दी, और अपनी सहचरी लक्ष्मी को भी आपने इतना इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा उनको भी नहीं दी है कि जितनी कृपा आपने हमको दी है। ब्रह्मा के सामने कभी आप द्वारपाल बनकर के नहीं गए, बैकुंठनाथ बनकर के गए। लक्ष्मी के सामने भी बैकुंठनाथ रहे, शंकर के सामने भी आप बैकुंठनाथ रहे, लेकिन आप बलि के यहां दुर्गपाल होकर के रहोगे, द्वारपाल होकर के रहोगे। कितना छोटा होकर के रह रहे हैं आप, कितनी कृपा है आपकी। आपके चरण कमल का मकरंद रस है, उसका थोड़ा भी कोई पान कर लेता है तो फिर वो सदा के लिए तर जाता है। हम तो महाराज बहुत दुष्ट कुल में पैदा हुए हैं, आपके दर्शन ही दुर्लभ है, हरदम हमको दर्शन मिल जाए महाराज, ये तो हमारे बैकुंठ से भी ऊंचा स्थान आपने हमको दे दिया। पौत्र के साथ में प्रहलाद जी चले गए, और इधर महाराज वामन ने, अब जब वो त्रिविक्रम हो गए, अब उन्होंने शुक्राचार्य जी से कहा, शुक्राचार्य जी अब बलि को तो हमने पताल में सुतल में भेज दिया है, अब यज्ञ में जो चीज बाकी है वो पूरी कर दो। तो शुक्राचार्य जी ने हंस करके कहा कि महाराज बलि राजा का अब भी कोई यज्ञ बाकी रहा है? आपके नाम के उच्चारण मात्र से यज्ञ फलीभूत हो गए, साक्षात आप यहां आ गए, अपने हाथों से आपने उसको लोक में भेजा है, और फिर आप कह रहे हैं कि इस यज्ञ में कोई कमी रह गई तो पूरा करो। कमी तो यही थी कि आप नहीं आए, और वो आप कमी आप ही ने अपने पधारने से पूरी कर दी, अब इस यज्ञ में कोई कमी नहीं है। क्या नहीं भाई, फिर भी कोई विधि में पूरी रह गई वो कमी, तो वह फिर वहां पर वो यज्ञ पूरा किया गया। और यज्ञ पूरा करने के बाद ब्रह्मा आदि फिर वहां से अपने अपने धाम में जाने लगे। धाम में जाने से पहले उन्होंने वामन भगवान को एक लोकपाल बना दिया, और उसके बाद इंद्र आदि के साथ विमान में बैठ करके भगवान स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में जाकर के और भगवान फिर आगे अपने स्थान पर चले गए। ये अवरुक्रम भगवान का दिव्य कथन है, इसको जो सुनता है कहते हैं कि उसके पितर तर जाते हैं। इतने दिन तक कथा सुने थे ना, उसमें आप लोगों के कल्याण की बात थी, कहते हैं वामन भगवान की कथा सुनते हैं तो सुनने वाले तृप्त होते हैं, पितरों को मालूम चलता है कि वामन भगवान की कथा हमारे वंशजों ने सुनी है, तो वो पितर वहां पर बैठे बैठे अपने कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। यत्र यत्रानुकीर्तित तत्तेषां सुकृतं विदु, जिनको भी ये कथा मिलती है उनका ये बड़ा भारी भाग्य है, उनको वामन भगवान की कथा सुनने को मिली। राजा पूछ रहे कि महाराज एक कथा और सुना दीजिए। वो कथा यही है कि भगवान मत्स्य रूप से अवतार क्यों लिए, मछली तो महाराज बहुत नीचा प्राणी है, भगवान क्यों मछली में क्यों जन्म लिए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऊंचा नीचा तो तुम्हारे भेद में है भैया, भगवान के लिए तो ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता है। जहां भगवान को भक्त का हित करना होता है वो नीचे से नीचे में चले जाते हैं और ऊंचे से ऊंचे में चले जाते हैं। बात क्या हुई कि ब्रह्मा जी ने एक बार प्रलय किया अपनी कल्पना से। उस समय में ब्रह्मा जी सोने के लिए जा रहे थे, तो सोते हुए ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेदों को हयग्रीव ने चुरा लिया। हयग्रीव ने चुरा लिया तो फिर भगवान ने मछली का रूप धारण किया, और उस समय में एक श्राद्ध देव इति ख्यात है। इस समय तो वो श्राद्ध देव है, पहले वो सत्यव्रत नाम का एक राजा था, वो शासन करता था। तो सत्यव्रत गया नदी के किनारे, वहां जाकर के वो संध्या कर रहा था, तो एक मछली उसके हाथ में आई। तो मछली हाथ में आई तो मछली ने कहा कि हमारी रक्षा करो, ये जीव जंतु मुझे खा रहे हैं। तो उन्होंने कमंडल में मछली को रख दी। कमंडल को लेकर के आश्रम में आए तो कमंडल में वो मछली माई नहीं, तो एक घड़े में रख दी। घड़े में भी नहीं माई तो फिर एक बड़े पात्र में रख दी, उसमें भी नहीं माई तो एक सरोवर में ले जाकर के रख दिया। सरोवर में भी वो नहीं माई मछली तो कहा कि भाई तुमको वापिस समुद्र में डालते हैं। क्या नहीं, समुद्र में मत डालो भाई, वहां पर मुझे जीव जंतु खा जाएंगे। अरे तुमको खा जाएंगे, इतने बड़े तुम बन जाते हो, तुमको खा कौन जाएगा? कौन हो तुम? कहीं साक्षात नारायण तो नहीं हो? आपकी लीलाओं को समझना बड़ा मुश्किल है, आप है कौन? हम आपको समझ नहीं पाए हैं। नते रविंदाक्ष पदोपसर्पणम मृषा भवेत सर्वसुरित प्रियात्मन। तो यदि आप नारायणी हैं तो आप बताइए आप किस कारण से मछली का रूप बनाकर आए हैं? जगतपति भगवान कहने लगे कि देखो सत्यव्रत जी, आज के सातवें दिन यहाँ महाप्रलय होने वाला है, सारा का सारा संसार ये जलमग्न हो जाएगा, इसलिए आपको सावधान होना है। आप समुद्र के किनारे रहिएगा, उस समय में एक नौका आपके पास आएगी, उस नौका के अंदर सारे ऋषियों को, मुनियों को, संतों को, महात्माओं को, वृक्षों के बीजों को और लताओं को, लताओं के बीजों को, औषधियों के बीजों को सबको इकट्ठा करके और उस जहाज में तुम बैठ जाना, सप्तर्षियों को उसमें बैठा देना। और उसके बाद मैं एक मछली के रूप में तुम्हारे पास में आऊंगा और उस समय में मेरे एक सींग रहेगा, उस सींग के साथ वासुकी नाग के द्वारा उस जहाज को, उस नाव को तुम बांध देना और फिर मैं तुमको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर प्रलय में तुम्हारा नाश नहीं होगा। जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी तब तक तुम मेरे पास रहोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और जब ब्रह्मा जी का दिन आएगा तो वापस मैं तुमको यहां छोड़ दूंगा। कहा बहुत अच्छी बात है महाराज। अब वो सप्तऋषियों को इकट्ठा कर लाए, सृष्टि के बीजों को इकट्ठा कर लाए, समुद्र के किनारे आकर बैठ गए। सातवां दिन हुआ, महाप्रलय हुआ। उस प्रलय के अंदर वे भगवान नाव भेजे, नाव के अंदर सब बैठ गए, वृक्ष और औषधियों को रख दिया, सप्तऋषियों को बैठा दिया और स्वयं सत्यव्रत भी बैठ गए और वासुकी नाग से भगवान मछली बनकर के आए, उनके सींग के साथ उस नाव को जोड़ दिया और वो नाव को लेकर के भगवान बहुत दूर चले गए। अब भगवान चले जा रहे हैं, अब राजा सत्यव्रत भगवान की प्रार्थना कर रहा है कि महाराज, अनादि काल से जीव अज्ञान के द्वारा प्रताड़ित होकर तरह तरह से कष्ट पा रहा है, ऐसे जीवों के पास कभी कभी कृपा करके आप पधारते हैं, आप उनको उत्तम शिक्षा देते हैं, अतः आप सब जीवों के परम गुरु हैं। मनुष्य तो बेचारा अपने कर्मों में फंसा हुआ जानता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके मन में तो एक ही लाय लगी हुई है कि जो इंद्रियों से हमको मिलता है उससे हमको सुख मिल जाए, ऐसे सुख की लालसा में समीयते असुखम, जगह जगह उसको असुख मिलता है, दुख ही दुख मिलता है, तो वो सुख उसको वास्तविक आपकी सेवा से ही मिल सकता है, तभी उसके हृदय की गांठ खुल सकती है और कोई उपाय नहीं है। जैसे आग के अंदर सोने को रख देते हैं तो सोने का मैल दोष सब दूर हो जाता है, ऐसे ही जब ये जीव आपका हो जाता है तो उसके सारे मैल खत्म हो जाते हैं, सारा संसार आपके अंदर दिखता है और आपके अंदर ही लीन हो जाता है। देखो तो सही, दुनिया में होड़ा होड़ लगी हुई है, अंधे की डंडी एक अंधे ने पकड़ रखी है, दोनों चले जा रहे हैं, माने अंधानुकरण हो रहा है, लोगों के पास देखने की सुनने की कोई फुर्सत ही नहीं है, वो बस अगला आदमी चाहे खाड़ में पड़े उसके पीछे पीछे चलो, वो पड़े तो हम भी पड़े। तो अचक्षुरंधस्य यथाग्रणी कुतस तथा जनस्या विदुषो अबुधो गुरु, दुनिया में मूर्खों को मूर्ख ही गुरु मिलते हैं, इसलिए उनको मूर्खता का ही मार्ग मिलता है और वे एक दूसरे के पीछे साफ गिरते चले जा रहे हैं। आपसे जो ज्ञान मिलता है उससे जीव को सच्चा प्रकाश मिलता है, इसलिए आप सुहृद है, प्रियेश्वर है, गुरु ज्ञान ममाभिष्ट गुरु ज्ञानम अभिष्ट सिद्धि, आप इच्छित सिद्धि देने वाले हैं, परम ज्ञान स्वरूप है, आप गुरु हैं हमारे, इसलिए महाराज आप हमको ऐसी शिक्षा दीजिए कि जिससे ज्ञान के दीपक से हमारा ये अंधकार है, चित्त का अंधकार सदा के लिए दूर हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सत्यव्रत के द्वारा ऐसी प्रार्थना सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान मछली बने हुए वहां उनको ज्ञान दे रहे हैं, वो बड़े एक बड़ी भारी संगीता के रूप में मत्स्य संगीता, मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुई है, सांख्य योग भी उसमें है और दूसरे तरह तरह क्रियावतीम तरह तरह के साधन भी उसमें बताए हैं। इस प्रकार से राजर्षि सत्यव्रत सब सप्तऋषियों के साथ में उस ज्ञान को प्राप्त करके महान आनंद को प्राप्त हो गए थे और जब वो प्रलय समाप्त हो गया तब भगवान ने हयग्रीव को मार दिया और वेद लाकर के उन्होंने ब्रह्मा जी को दे दिया। सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा से इस समय में वैवस्वत मनु बनकर के सारे संसार का शासन कर रहा है। ये भगवान के अवतार की कथा मैंने आपको सुनाई है। प्रलय पय सिद्धातु सुप्त शक्तेर मुखेभ्य श्रुतिगणम अपनीतम प्रत्युपादत्त हत्वा दितिजम कथय दियो ब्रह्म सत्यव्रतानाम तमाम अखिल हेतु जिम्मा मे नाम न तोस्मि। प्रलय काल में सोए हुए ब्रह्मा जी से जो हयग्रीव वेद ले गया था, भगवान उसी वेद को लाने के लिए और उस दितिनंदन हयग्रीव को मारने के लिए एक मछली के रूप में अवतार लिए थे। ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान के प्रणाम के साथ ही
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वसुदेव
नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव
नाथ नारायण वासुदेव।
कल आठवें स्कंद की कथाएं थी। भगवान प्रत्येक मनु के राज्य में अवतार लेकर सद्धर्म का प्रचार करते हैं और सद्धर्म की रक्षा करते हैं। सद्धर्म क्या है वो अलग अलग आख्यानों से बता दिया। गजेंद्र मोक्ष के द्वारा भगवान ने शरणागति को सद्धर्म बताया है। अमृत मंथन की कथा से सात्विकता की रक्षा को सद्धर्म बताया है। मोहिनी अवतार से अपने भक्त के मनों को आनंदित करना सद्धर्म बताया है। वामन अवतार से प्रतिज्ञा पूर्ति को सद्धर्म बताया है और मत्स्यावतार के द्वारा सृष्टि के बीज जो ज्ञान और दूसरे पदार्थ हैं इनकी रक्षा करना सद्धर्म बताया है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जब तक इस जीव का कल्याण नहीं होता है तब तक इस जीव को कितने समय तक भटकना पड़ेगा इसका कोई अंत नहीं है। अतः ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का राज्य हो और उसमें भी 71 चतुर्युगी से ज्यादा एक एक मनु को शासन करने का समय मिले तो वह शासन करने वाले और शासित होने वाले दोनों ही बद्ध जीव हैं और इनके कोई कालक्रम की सीमा नहीं है कि ब्रह्मा के एक दिन के बाद उनकी मुक्ति होगी अथवा ब्रह्मा के पूर्वार्ध में मुक्ति होगी आहोस्वित परार्ध के बाद मुक्ति होगी। अतः अब राजा परीक्षित इन मन्वंतरों के विषय में सुनने के बाद यह विचार करते हैं कि भाई बहुत थोड़ा समय है, पता नहीं कब हमको संसार से जाना पड़ जाए, तो कोई ऐसा मुख्य उपाय कर लेवे जिस उपाय से हम लोगों का कल्याण हो। तो राजा परीक्षित मनुवंश के विषय में माने वर्तमान मनु के विषय में पूछते हैं कि इनके कौन कौन लड़का लड़की हुए, इनका वंश सुनाओ। देखो राजा परीक्षित प्रायोपवेश कर गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, इनको मनु की वंशावली से क्या तात्पर्य हो सकता है। सुखदेव जी महाराज भी यदि ये मनु वंशावली किसी प्रकार से उपयोगी न होती तो वे तत्काल कह देते कि देखो राजन तुम तो मरने वाले हो, किस राजा का कौन पुत्र हुआ इससे तुम्हें क्या लेना देना। परंतु राजा के पूछने पर बड़ी प्रसन्नता से सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं इसका अर्थ है कि ये भक्तों का चरित्र है। भक्तों का चरित्र सुनना और भक्तों का चरित्र सुनाना ये संतों का पवित्रतम काम है, क्योंकि भक्तों के चरित्र के माध्यम से ही हम भगवान की आराधना कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो भगवान के चरित्र को भगवान के भक्त बड़े प्रेम से सुनते हैं और भक्तों के चरित्र को स्वयं भगवान आकर सुना करते हैं। इसलिए नवम स्कंद की भक्तों से भरी हुई कथा है और इसमें भक्ति ही भक्तों के चरित्र की कथा हो ऐसी बात नहीं, यत्र तत्र भगवान के अवतारों का भी सामान्यतया वर्णन मिलेगा, परंतु विशद वर्णन भक्त चरित्र के साथ है। अब राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने 14वें मनु बताए, उनका शासन का समय मन्वंतर कहलाया ये बता दिया है, वर्तमान में वैवस्वत मनु का शासन चल रहा है, इसके यहाँ कितने कितने राजा हो गए, कितने आगे होने वाले हैं, वर्तमान में कौन कौन है। तेषाम न पुण्य कीर्ति नाम सर्वेषाम वद विक्रमान, ऐसे पुण्यात्माओं का चरित्र हमें विशेषता से सुनाओ। राजा ने जब ये बात पूछी तो उस ब्रह्मवादियों की सभा में परम धर्म को जानने वाले सुखदेव जी महाराज बड़ी प्रसन्नता से सुना रहे हैं। कहने लगे देखो परीक्षित, सैकड़ों वर्षों तक भी हम लोग यदि ऐसे भक्तों के विषय में पूछना चाहें और जानना चाहें तो हम पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं। अब हम इस वंश का प्राकट्य कैसे हुआ वो बताते हैं। जितने मनुष्य हैं उनके वंश के मूल में जाएं तो एक परमात्मा मिलेंगे, संपूर्ण प्राणियों की वे आत्मा है। उन्होंने संसार को बनाने की इच्छा से अपने नाभि से ब्रह्मा को बनाया, कमल बनाया, कमल से ब्रह्मा को पैदा किया और ब्रह्मा के मन से मरीचि पैदा हुए, मरीचि के कश्यप जी हुए और कश्यप जी का विवाह दक्ष नंदिनी अदिति के साथ हुआ जिससे विवस्वान पैदा हुए थे। कहते हैं यही वर्तमान के मनु श्राद्ध देव के रूप में भी माने गए हैं, इनका नाम वैवस्वत मनु भी है और श्राद्ध देव भी है। इनके 10 लड़का हुए, इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट और करुषक, नरिष्यंत, प्रिशाद्र, नभग और कवि। ये 10 लड़का तो बाद में पैदा हुए, पूर्व में इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने वशिष्ठ जी को बुला करके मित्रा वरुणी का यज्ञ करवाया कि मित्रा वरुण का यज्ञ कीजिए जिससे हमारे संतान हो। अब आप इस कथा को बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हमारे ऋषियों के मंत्रों में कितनी शक्ति है और साथ साथ उन संकल्प करने वालों के संकल्प में कितनी शक्ति है। तो मनु की तो इच्छा थी कि हमारे लड़का हो, लेकिन प्रकट रूप से उन्होंने कहा नहीं। और मनु की स्त्री थी शत्रुपा, उसका नाम श्रद्धा भी है, उसके मन में ये इच्छा थी कि मेरे लड़की हो। तो जिस समय में प्रारंभ में गुरुजी को, आचार्य को चुना गया तो उस समय में यही बात कही कि हमारे संतान होनी चाहिए, मनु ने यही बात रखी। अब संतान तो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। उस समय में यज्ञ चालू कर दिया गया तो उसके बाद होता को बुला करके महारानी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं पुत्री चाहती हूँ, ये याद रखना। तब उस होता ने उस श्रद्धा की श्रद्धा देखी कि ये पुत्री चाहती है, उसके अनुसार उन्होंने आहुतियां दी, समय पर उनके पुत्री हो गई जिसका नाम इला रखा गया। इधर मनु ने अपने गुरुजी को बुलाया, आचार्य जी को बुलाया और बुला करके कहा कि आपने ये नहीं सोचा कि राजा पुत्री नहीं चाहता, पुत्र चाहता है, तो हमारे पुत्री कैसे हुआ, पुत्री पुत्र होना चाहिए था, पुत्री नहीं होनी चाहिए थी। भगवान किमिदम जातम कर्म वो ब्रह्मवादिनाम, आप बड़े ब्रह्मवादी हैं, आपके कर्म में ऐसा कौन सा दोष आ गया कि हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो वशिष्ठ जी ने होताओं को बुलाया, होता उद्गाता अध्वर्युर ब्रह्मा, इन चारों से चातुर्होत्र यज्ञ होता है। तो होता को बुला करके पूछा तो होता ने उत्तर दिया कि महाराज हमको तो महारानी ने जैसा कहा वैसा हमने संकल्प कर दिया। अहो एतत् संकल्प वैषम्यम, ये तो होता के संकल्प से हुआ है महाराज, होता के संकल्प में विषमता डाल दी गई, अतएव आपकी लड़की हो गई। कोई चिंता मत करो, आपके यही लड़की है वो लड़का हो जाएगा। कैसी विचित्र, अब इन चरित्रों में ज्यादा कुछ वैज्ञानिकता नहीं देखनी है, विशेषता से यही सोचना है कि ऋषियों के पास कितनी दिव्य शक्ति थी। अब उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद भगवान आदि पुरुष को प्रसन्न किया। भगवान सर्व समर्थ हैं, क्या नहीं कर सकते। उन्होंने उस इला को पुरुष बना दिया, माने उस लड़की को लड़का बना दिया और उसका नाम सुद्युम्न रख दिया। मनुष्य देखो सोचता क्या है, लेकिन भाग्य में जो होता है वही होके रहता है। एक बार सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए गया, साथ में मंत्री भी थे, नौकर चाकर भी थे। वे घोड़े पर बैठ करके बहुत दूर निकल गए, हाथ में धनुष बाण है, और शिकार करते 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 इलावर्त भूमि में चले गए। और इलावर्त क्षेत्र में जब भी कोई पुरुष जाता है तो वो स्त्री हो जाता है, चाहे वो पशु पक्षियों में मादा हो, चाहे मनुष्यों में मादा हो, चाहे देवताओं में मादा हो, जो भी कोई पुरुष वहां जाएगा वहां पर वो मादा हो ही जाएगा। कोई नर वहां रह नहीं सकता एक शंकर के अलावा। उसका कारण क्या था कि एक बार भगवान शंकर विराजमान थे, पार्वती जी भी विराजमान थी, इधर कई संत महात्मा आए ब्रह्म विद्या जानने के लिए भगवान शंकर के पास। तो पार्वती जी ने निवेदन किया कि महाराज आपको न कैलाश पर्वत पर ये महात्मा ठहरने देते, न आपको यहाँ इस एकांत इलावर्त में ठहरने देते, ये चाहे जहाँ आ जाते हैं ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने के बहाने से हरदम आपके पास में रहते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ हम आपके प्रेम को हम प्राप्त कर सके और घर बीती बात कर सके, कुछ घर गृहस्थ की भी तो बात करें। तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती की प्रसन्नता के लिए यह वरदान दे दिया कि इस क्षेत्र में कोई आएगा वो स्त्री होकर के रहेगा, पुरुष होकर के नहीं रहेगा। तब वे ऋषि मुनि वहां से शंकर भगवान को प्रणाम करके नरनारायण आश्रम में चले गए। तो इस कारण से उस क्षेत्र में कोई पुरुष जाता नहीं था। सुद्युम्न को बिचारे को पता नहीं, वो इलावर्त की सीमा में आ गया, आते ही वो स्त्री हो गया। उसके साथ के नौकर चाकर थे वे सब स्त्री हो गए। वो घोड़ा था वो घोड़ा भी घोड़ी हो गया। अब देखा कि सब स्त्री हो गए, बात क्या है, अब सब इधर उधर भटक गए। अब वो जो सुद्युम्न था वो वापिस स्त्री हो गया। वहीं पर पास में बुद्ध का आश्रम था, बुद्ध ने उस स्त्री बनी हुई सुद्युम्न को अपनी स्त्री बना लिया और इस प्रकार से वो रहने लगे। इधर उधर इधर वहां वशिष्ठ जी को मालूम चला कि जो पहले स्त्री था और फिर मैंने पुरुष बनाया वो वापिस स्त्री हो गया है। तो फिर भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर के लिए यज्ञ किया। भगवान शंकर ने कहा देखो भाई, जो हमारा वरदान है वो तो बदलता नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन जरूर किया जा सकता है। ये एक महीने स्त्री रहेगा, एक महीने पुरुष रहेगा। तो सुद्युम्न जी एक महीने स्त्री रहते थे, एक महीने पुरुष रहते थे, ऐसी इनकी व्यवस्था चल रही थी। अंत में जब ये पुरुरवा इनसे पैदा हुए थे, इला से जब पुरुरवा पैदा हुए तो पुरुरवा को ये राज्य देकर के सुद्युम्न जी जंगल में चले गए और भगवान की भक्ति करने लगे। अब मनु के कोई संतान रही नहीं, तब उन्होंने दूसरा यज्ञ किया, तपस्या की, और यमुना के किनारे 100 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान को प्रसन्न किया और इनके 10 बेटा हुए। उन 10 बेटों का ये बहुत बड़ा वंश चला है। नवम स्कंद में बड़े पराक्रमी राजाओं के चरित्रों का वर्णन है। तो पहले मनु के इला हुई, वो इला ही सुद्युम्न बनी और फिर इलाव्रत खंड में जाने पर वो वापिस इला हो गई। बुद्ध से उसका पुरुरवा नाम का लड़का हुआ और उसने शासन किया और स्वयं वे वन में चले गए। आगे जाकर उन्हीं मनु के 10 लड़का हुए, जिसमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। बताते हैं कि प्रसद्र नाम का जो मनु का बेटा था वो गायों की सेवा करता था। रात्रि के अंदर बड़े वीरासन के साथ वो गायों की रक्षा करता, कोई सिंह आकर गायों को मार न दे। एक बार की बात है, वो तलवार लिए हुए बैठा हुआ था और रात्रि के अंदर अंधेरा था, थोड़ा बरसात का भी समय था। प्रलीनोडु गणे निशि, उस समय में चंद्रमा वगैरह सब छिपे हुए थे बादलों के कारण। तो उनके बीच में एक सिंह आया और सिंह ने आकर के किसी गाय को पकड़ लिया। जब वो व्याघ्र पकड़ लिया तो सिंह को गाय को बड़ा कष्ट हुआ, गाय जोर से रंभाने लगी। उसकी आवाज सुनकर के उसने तलवार चलाई थी इस निशाने से कि सिंह मरेगा, परंतु सिंह का तो कान कट गया। सिंह का तो केवल कान ही कटा और गाय की गर्दन कट गई। प्रातःकाल उसने ये सब काम देखा तो गुरुजी के पास जाकर अपने अपराध को अपने द्वारा बता दिया, कृतागसम अकामत है। जब गुरुजी के सामने जब ये बात कही तो गुरुजी ने कह दिया कि देखो, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया कि महाराज, ने तो मेरे गाय के मारने की कोई मन में थी और न कोई मैंने मारने की इच्छा से मारा है, ये तो मेरे हाथ से गलती से मर गई। कि मर गई तो अब तुम श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं रहे, तुम्हारा कर्म बहुत नीचा हो गया, तुमको राज्य छोड़ देना चाहिए। तो वे उस राजमहल को छोड़ के चले गए, भगवान का भजन करने लग गए। ऐसे ऐसे बड़े विलक्षण गोभक्त ये राजा लोग हुए थे। कहते हैं मनु का बेटा कवि था, बड़ा निष्प्रिय था, भाई बंधुओं को छोड़कर के जंगल में चला गया। मनुपुत्र जो करुष था उससे कारुष जाति के पैदा हुए लोग, कहते हैं बड़े ब्राह्मण्य थे, बड़े धर्मवत्सल थे। मनुपुत्र धृष्ट से धार्ष्ट पैदा हुए और उससे अच्छे अच्छे राजा लोग, बहुत पराक्रमी राजा लोग हुए और उन्होंने धर्म की रक्षा की। नृग के वंश में भी बड़े श्रेष्ठ राजा लोग हुए। नरिष्यंत था, वो भी मनु का बेटा, उसके चित्रसेन आदि बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ उनकी संतानें हुई। उसी नरिष्यंत के वंश के बाद दिष्ट का वंश सुनाते हैं कि दिष्ट का पुत्र नाभाग हुआ और वो कर्म के द्वारा वेश्य बन गया। उसके भलंदन नाम का लड़का हुआ। इस वंश में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए कि आगे जाकर उन्होंने बड़ा विचित्र यज्ञ किया। मरुत नाम का एक राजा हुआ, उस राजा ने ऐसा विचित्र यज्ञ किया कि सारे पात्र सोने के थे और उसमें स्वयं इंद्रदेव भी आए यज्ञ में और स्वयं भी उस यज्ञ के अंदर अपना हिस्सा लिए और हिस्सा लेकर के वहीं पर मस्ती में बैठ गए थे। ऐसे ऐसे भी राजा लोग हुए हैं। कहते हैं इनके बाद तृणबिंदु हुए। तृणबिंदु का विवाह अलम्बुषा के साथ हुआ, उससे इडविडा नाम की कन्या पैदा हुई। कहते हैं इस इडविडा का विवाह विश्रवा के साथ हुआ, जिससे कुबेर पैदा हुआ। ऐसे ऐसे बड़े विलक्षण पराक्रमी राजा लोग हुए। मनु का बेटा शर्याती था, बड़ा ब्रह्मिष्ठ था, ब्राह्मणों में भी श्रद्धा करने वाला और वेद को भी जानने वाला। और वो आंगिरस यज्ञ के अंदर दूसरे दिन की जो विधि है उसको वो जानने वाला था। एक बार की बात है कि वो च्यवन ऋषि के आश्रम में गया, उसके साथ में सेना भी थी, उसके साथ में उसकी कन्या भी थी। ऋषि के आश्रम में गए तो ऋषि उस समय में तपस्या में थे और उनके शरीर को दीमक खा चुकी थी, केवल उनकी आंख चमक रही थी। तो सुकन्या ने देखा कि कोई सामान्य जंतु होगा, उसने एक तिनका लिया और उस प्रकाश वाली आंखों के अंदर जाकर के वो कांटा लेकर के आंख के अंदर दे दिया, जिससे उनके खून आने लग गए ऋषि के। उसको पता ही नहीं कि कोई ऋषि है, चमकने वाला कोई जंतु ही समझा उसने। ऋषि के इस अपराध के कारण सबके मलमूत्र बंद हो गए, सबके तकलीफ हो गई। राजा ने शर्याती ने पूछा कि भाई, इस आश्रम में किसी ने अपराध तो नहीं कर दिया है? तो सुकन्या ने कहा कि और तो कोई अपराध हमारे द्वारा हुआ नहीं, एक कांटे से चमकीले किसी पक्षी चमकीले किसी जंतु को हमने जरूर पीड़ित किया है कि कहां क्या बताओ। अरे ये तो साक्षात ऋषि है, इनकी आंख के अंदर तुमने कांटा डाल दिया। अब वो राजा ने उस ऋषि को बहुत मनाया, ऋषि से प्रार्थना की और अपनी कन्या थी वो कन्या ऋषि को भी दे दी और कह दिया बेटा अब आजन्म आमृत्यु तुम इन्हीं की सेवा करो और सेवा करके इनको ही अपना पति मानो और यही तुम्हारे स्वामी रहेंगे। बड़े वो कुपित होने वाले, बात बात में नाराज होने वाले च्यवन ऋषि थे, लेकिन इतना सेवा से उनका मन जीत लिया कि फिर उनका स्वभाव ही बदल गया। अब वो च्यवन ऋषि तपस्या करने के कारण से शरीर से बहुत बूढ़े से हो गए थे। एक बार की बात है कि उनके आश्रम में अश्विनी कुमार आए, अश्विनी कुमारों से कहा देखो भाई मेरा शरीर तपस्या के कारण से बहुत बूढ़ा हो गया है, तुम्हारे पास तो कई प्रकार की दवाइयां हैं, कोई ऐसी दवाई दे। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि देखो आपका शरीर तो इतना गल चुका है, अब आपको दवाई से तो पार पड़ने वाली नहीं है, तो क्या करें कि हमारे पास एक सिद्ध रस का कुंड है, उस कुंड के अंदर हम आपको स्नान कराते हैं। तो दोनों अश्विनी कुमार और स्वयं च्यवन ऋषि तीनों ने उस कुंड में स्नान किया। स्नान करने पर तीनों का शरीर एकदम चमकने वाला, बड़ा दिव्य देदिव्यमान वो शरीर उनके अंदर से प्रकट हुआ। अब अश्विनी कुमार तो वैसे ही सुंदर थे, अब च्यवन ऋषि भी उनमें से एक हो गए। अब वो तीनों एक जैसे दिखाई देने लगे, तीनों एक जैसे दिखाई देने लगे। तो सरयाती ने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की कि हे देवताओं, आप मेरे पति को स्वस्थ करने के लिए ले गए थे, अब मैं आप तीनों में अपने पति को नहीं पहचान रही हूं, आप कृपा करके मुझे मेरा पति दे दीजिए। इससे अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए और च्यवन ऋषि भी बड़े प्रसन्न हो गए। च्यवन ऋषि एकदम युवा हो गए, स्वस्थ हो गए और वहां रहने लग गए। एक बार की बात है कि शरियाती के मन में यज्ञ करने की आई तो वे च्यवन ऋषि के आश्रम में गए। आश्रम में गए तो अपनी बेटी को देखा कि वो तो जवान पुरुष के पास में बैठी हुई है, तो बेटी पर बड़े कुपित हुए। बिचारी बेटी आई, पिताजी को प्रणाम किए, बड़ी मुस्कुराती हुई, बड़े आदर से पिताजी को अंदर लाई, लेकिन पिताजी ने एक नहीं सुनी और फटकारना चालू किया कि अरे हमने सारा संसार जिनको नमस्कार करता है उसे आपको पति के रूप में दिया और आपने ये काम किया, एक जराग्रस्त और रोगग्रस्त पति को छोड़कर तो इस प्रकार युवकों के बीच में बैठी, तुझे शर्म नहीं आती, तुमने हमारे कुल के अंदर कलंक लगा दिया है। इस प्रकार से फटकारा तो हंसती भी कहने लगे कि नहीं पिताजी आपके जवाई है, आप बात तो करो पहले। तब सरयाती ने च्यवन ऋषि से पूछा, च्यवन ऋषि ने कहा कि नहीं तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारे वंश की जो मर्यादा है उसके अनुसार चलने वाली है और अश्विनी कुमारों के द्वारा मुझे रूप रंग मिल गया, तो कहा कि हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है यज्ञ कीजिए। तो च्यवन ऋषि ने यज्ञ करवाया, सरयाती उसमें यजमान बन गए। उस समय में उस यज्ञ का उद्देश्य ये था कि अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ का हिस्सा मिलना चाहिए। ये च्यवन ऋषि के मन में बात आई। जब च्यवन ऋषि को उन्होंने जवानी दे दी तो अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ का हिस्सा दिलाने का काम च्यवन ऋषि का था। तो च्यवन ऋषि ने यज्ञ के अंदर जो देवता मना किए थे कि अश्विनी कुमार चूंकि वैद्य है, वैद्यों को हम यज्ञ का हिस्सा नहीं देंगे, तो च्यवन ऋषि ने उनको हिस्सा दिलाने के लिए यज्ञ किया। इंद्र इससे बड़ा कुपित हो गया और कुपित होकर के वो वज्र लेकर के आया और आकर के वो सवज्रम स्तंभयामास है भुजम इंद्रस्य भार्गव है, कहते हैं वो जब वो लेकर के वज्र लेकर के आया और उनको च्यवन ऋषि को और उनको मारने लगा, तो कहते हैं उस समय में च्यवन ऋषि ने एक ऐसा मंत्र दिया, एक ऐसे मंत्र का जाप किया कि उसका हाथ वहीं का वहीं रह गया। जब उसका हाथ वहीं रह गया तब इंद्र ने क्षमा मांगी और च्यवन ऋषि ने कहा कि देखो अब आगे से तुमको अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ का हिस्सा मिलना चाहिए। तब से उनको यज्ञ का हिस्सा मिलने लग गया। इसी शरियाती के तीन लड़का हुए, उतानवरी, आनर्थ और भूरिसेन, तीन लड़का हुए। कहते हैं आनर्थ के रेवत हुआ, रेवत के कुकुदमी हुए और कुकुदमी के रेवती नाम की कन्या हुई। देखो ध्यान से सुने, तो रेवती के पिता ने कुकुदमी ने विचार किया कि मेरी कन्या का सर्वश्रेष्ठ पुरुष के साथ विवाह हो, तो वो गए ब्रह्मा जी के लोक में। देखो ब्रह्मा के लोक में पार्थिव शरीर से नहीं जाया जा सकता, लेकिन भागवत की कथा के अनुसार कुकुदमी ब्रह्मलोक में इस शरीर से गए और वहां ब्रह्मा जी किसी काम में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी से मिलने का मौका मिला तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कुकुदमी जी आप तो बहुत देरी कर चुके, 27 चतुर्युगी बीत गई, माने 27 तो सतयुग बीत गया, 27 त्रेता बीत गए, 27 द्वापर बीत गए, 27 कलयुग बीत गए, आपका वंश में तो कोई है ही नहीं, वहां ज्ञाति नाती सब नष्ट हो चुके हैं, अब किसके साथ विवाह करोगे, और जब तक तुम जाओगे तब तक और समय बीत जाएगा, इसलिए जल्दी जाओ, तुम जाओगे तब तक या यदुवंश में एक बलराम जी है, इस समय सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, आप उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना। तो कुकुदमी जल्दी जल्दी आए पृथ्वी पर और आकर के उन्होंने बलराम जी के साथ में अपनी कन्या का विवाह कर दिया। तो कन्या के विवाह के लिए ब्रह्मा जी से पूछा, क्योंकि सारी सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी, उनको मालूम है कि कौन पुरुष योग्य है। तो माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि किसी योग्य पुरुष को ही अपनी कन्या देवे। सुखदेव जी महाराज आगे बता रहे हैं कि नाभागो नभका पत्यम, नभक का बेटा नाभाग था, तो नाभाग था तो वो तो विद्वान था, बड़ा भारी विद्वान, विद्या अध्ययन करने के लिए बाहर चला गया, पीछे से उसके जितने लड़का थे नभक के और नाभाग के जितने भाई थे उन सब ने धन का बंटवारा कर लिया, धन का बंटवारा किया तो नाभाग को कुछ भी नहीं मिला, नाभाग को कुछ नहीं मिला। इधर अध्ययन करके वो अपने पिताजी के पास आया, कहने लगा कि पिताजी हमारे भाइयों ने धन का विभाग किया तो हमारे हिस्से में क्या दिया है, ध्यान देने। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे हिस्से में और कोई भी संपत्ति नहीं दी, तुम्हारे हिस्से में मुझे दिया है। तो पिताजी मैं निहाल हो गया, आप कोई संपत्ति थोड़ा ही हो, आप कोई धन थोड़ा ही हो, आप तो मेरे लिए साक्षात ईश्वर के समान हो, और मुझे उन्होंने आपको उन्होंने मुझे ये दे दिया है तो बड़ी भारी कृपा की है। पिताजी के नेत्रों में जल आ गया कि देखो मेरे में कितनी भक्ति है। पिता ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि बेटा तुम जाओ, देखो ये आंगिरस गोत्र में ये आंगिरस सत्र कर रहे हैं, माने ये एक ऐसा अंगिरा गोत्र में उत्पन्न होने वाले एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं कि इनको छठे दिन की विधि का ज्ञान नहीं है, मेरे कहने से तुम इनके यज्ञ में चले जाओ और छठे दिन की विधि तुम पूरी करवा दो, उसके बाद यज्ञ के अंदर जो बचेगा सो तुमको मिलेगा। ध्यान से सुने हो, तब वो नाभाग वहां गया और वो छठे दिन की विधि जानते नहीं थे, उनको छठे दिन की विधि से यज्ञ करवा दिया। सारे यज्ञ के अंदर बैठे हुए सब प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद जो कुछ यज्ञ की सामग्री बची, स्वर्गंते सत्र परिशेषितम, सारी सामग्री उनको दे दी, लो भैया ये तुम्हारी सामग्री है। अब वो सारी सामग्री इकट्ठी कर रहा था नाभाग भी, हमको सामग्री मिल गई निर्वाह करेंगे। इतने में ये काला पुरुष आया, उसने कहा ओ भाई यज्ञ की सामग्री तुम कैसे ले रहे हो, ये वस्तु तुम मेरी है। उसने कहा कि मुझे तो ऋषियों ने दिया है, यज्ञ करने वालों ने दिया है, इसलिए मैं ले जा रहा हूं, और तो कोई बात नहीं। कहना ही नहीं, तुम जाओ अपने पिता से पूछ के आओ कि इस संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है कि मेरा अधिकार है। क्या अच्छी बात है, संपत्ति को तो वहीं रहने दिया, गया पिताजी के पास। पिताजी से जाकर पूछा कि महाराज उन ऋषियों ने तो ये कह दिया था कि ये वस्तु तुमको मिलेगी, और आपने भी मुझे कह दिया कि ऋषि तुमको बहुत धन देंगे, लेकिन जो ही मैं वो सारी सामग्री बटोरने लगा तो एक काले काले जाने कौन महानुभाव आए, उन्होंने कहा कि ये तो सब कुछ मेरा है। पिता ने कहा ओहो भूल हो गई बेटा, ये सारा धन भगवान रुद्र का है, क्योंकि उनको दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सारे देवताओं ने यज्ञ की बची हुई वस्तु उनके अर्पित कर दी थी, ये उन्हीं का है। वो नाभाग वापिस आया तब तक रुद्र वहीं खड़े थे। ये बोलो नाभाग क्या बात है, तुम्हारे पिता ने क्या कहा है, क्या निर्णय दिया है। हाथ जोड़ के कहा महाराज ये धन आपका है, हमारी भूल हो गई, पिताजी ने कहा है कि उन्हीं का है। शंकर भगवान बड़े खुश हो गए कि बेटा इतने गरीब हो, लेकिन तुमने सत्य को नहीं छोड़ा, तुम्हारे बाप ने सत्य को नहीं छोड़ा और तुमने सत्य को नहीं छोड़ा। बेटा मैं बहुत खुश हुआ हूं, ले जाओ ये सारा धन तुम्हारा और बैठो, हम तुमको एक ब्रह्म ज्ञान और देवे। तब ज्ञानम ब्रह्म सनातनम, तब उनको ज्ञान दिया, सनातन ब्रह्म का ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के बाद उसको कहा कि अब जाओ, तुम्हारे कोई कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे पास इतने दिव्य गुण है, जिसके पास संतोष होता है, जिसके पास सत्य होता है, जिसके पास पिता की भक्ति होती है, ये सबसे बड़ा धन तो तुम्हारे पास है ही, लौकिक धन की जरूरत ही क्या है, इसलिए तुम बहुत बड़े धनी हो, जाओ ये धन ले जाओ। गृहाण द्रविणम दत्तम मत सत्वे परिशेषितम। इस प्रकार से भगवान शंकर खुश हो गए और नाभाग अपने घर पर आ गए। क्या बतावे, ये वही नाभाग है जिनके अम्बरीश जैसे भगवान के भक्त पैदा हुए थे। नास्पृशत ब्रह्म शापोपी यम न प्रतिहत क्वचित, और ब्राह्मण का शाप भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अरे ब्राह्मण का शाप लग गया भगवान को और भगवान के कुल को, लेकिन ब्राह्मण का शाप नहीं लगा भगवान के भक्त को। इतना विचित्र वो अम्बरीश भक्त हुआ भगवान का। राजा पूछने लगे कि महाराज इस अम्बरीश की कथा को आप संक्षेप में मत कहो, विस्तार के साथ कहो। ब्रह्म दंडो दुरत्यय, ब्राह्मण का शाप कभी व्यर्थ चला जाए ऐसा हमने सुना नहीं, आज पहली बार सुना है, क्योंकि मेरे को भी तो ब्राह्मण का शाप लगा है। ब्राह्मण का शाप भी टल सकता है ऐसी आप बात बता रहे हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात है। बताओ महाराज, वो ब्राह्मण का शाप जो कि कभी किसी के द्वारा टाला नहीं जा सकता है, अम्बरीश के यहां ब्राह्मण का शाप क्यों नहीं लगा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं आप सुनो, सात द्वीप वाली इस पृथ्वी के ऊपर एकमात्र छत्र सम्राट ये अम्बरीश था, और कभी नष्ट न होने वाली इतनी विपुल उसको संपत्ति मिली थी, लेकिन मन में उसकी यही विचार था कि ये सब स्वप्न के समान है। स्वप्न में कोई चीज थोड़ी देर के लिए मिलती है, बाद में जगने पर बिछुड़ जाती है, ऐसे ही ये सारा जो कुछ हमको इस जगत में मिला हुआ है स्वप्न के समान है। ऐसा विचार करके विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशति यत पुमान, बड़ा सावधान रहा कि इस संपत्ति में कहीं पर भी हमारा मोह हो गया तो हम बहुत बड़े भारी नरकों में चले जाएंगे। इसलिए रात दिन भगवान का नाम लेता, भगवान की भक्ति करता, और प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लोष्टवत स्मृतम, और भगवान वासुदेव में इतना प्रगाढ़ भाव हो गया कि सारे संसार को ये पत्थर के लौंदे के समान, पत्थर के ढगले के समान वो समझता था, ऐसा उसका दिव्य भाव हो गया। देखो परीक्षित, यदि हमको मन मिला है तो उससे भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करना चाहिए, और यदि वाणी मिली है तो वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान का गुणानुवर्णन करना चाहिए, इसलिए भगवान ने वाणी दी है। लोग कहते हैं कि भगवान ने हमको कान क्यों दिया है, कुछ सुनने के लिए दिया तो सुनो क्या, भगवान की कथा सुनो, संत महात्माओं के पवित्र वचन है उनको सुनो। हाथ दिया है तो भगवान के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ने के लिए हाथ दिए है, और भगवान की मूर्ति से जो कुछ ये दिखते हैं इन सब की सेवा करें इसलिए हाथ दिए है। आंख हमको दिया है तो भगवान को और भगवान के भक्तों को हम देखें, उनका दर्शन करें, इसके लिए आंख दी है। और नाक दिया है तो भगवान के चरणों में जो लगा हुआ सुगंधित द्रव्य उसको सूंघने के लिए दिया है। चरण दिए हैं तो भगवान के मंदिर तक जाने के लिए दिए हैं, और ये सिर दिया है तो भगवान के चरणों में रखने के लिए मिला है, और ये कामना करने की वृत्ति मिली है जिससे हम संसार को चाहते हैं। अरे ये कामना वृत्ति बहुत बढ़िया है, अरे कामना के द्वारा जिसको हम चाह रहे हैं वो तो हमारा विषय अच्छा नहीं है, लेकिन कामना वृत्ति बड़ी अच्छी है, कामना तो रहनी चाहिए मन में। तो क्या होनी, किसकी कामना करे कि कामम च दास्ये न तु काम काम्यया, यदि कामना करे काम वृत्ति हमारे है तो भगवान की दास वृत्ति की कामना हो, हे भगवान हम आपके दास हो जाए, ये इच्छा हरदम रहनी चाहिए। तो इन इंद्रियों का और मन का उपयोग अम्बरीश ने इतना अच्छा किया कि अपना सब कुछ भाव भगवान में रख दिया, भगवान में उसकी निष्ठा हो गई, और उसने अश्वमेध यज्ञ के सरस्वती नदी के किनारे धन्वदेश में वशिष्ठ है, असित है, गौतम है, इन सब ऋषियों को उसने बुलाया, बहुत उनको दक्षिणा दी और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने यज्ञ करवाए। परंतु याद रखो परीक्षित, उन यज्ञों के द्वारा उन्होंने कोई स्वर्ग की इच्छा नहीं की। स्वर्गों ने प्रार्थितो, स्वर्ग की इच्छा नहीं थी, कोई उनके मन में और दूसरी इच्छा नहीं थी, केवल यही बात थी कि यहां यज्ञ के बहाने से लोग आएंगे और उन सब के बीच में बैठ करके हम भगवान की चर्चा करेंगे। देखो ये सब लोगों को बुला बुला करके भगवान की कथा सुनना और संतों के पावन वचन सुनना, ये हमारी बहुत अनादि काल की एक बहुत लंबी चौड़ी इतिहास से भरी हुई एक परंपरा है। इसलिए ये परंपरा हम लोगों के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। तो श्रृण्वद भी उपगायद भी उत्तम श्लोक चेष्टितम, इस प्रकार से उसके पास किसी प्रकार से कोई सिद्धि की तो कमी थी नहीं। भगवान भी बड़े प्रसन्न होते थे। भगवान इसलिए प्रसन्न हुए कि देखो मुझसे कुछ भी नहीं चाहते हैं और ये मन संपत्ति के रहते हुए मुझ में लगा रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है। देखो एक धनी आदमी भगवान का भक्त होता है और एक गरीब आदमी भगवान का भक्त होता है, तो भगवान को आश्चर्य इस बात का है कि देखो इसके पास धन है प्रेम करने के लिए, इसके पास वस्तु है, लेकिन उससे प्रेम न करके मुझसे प्रेम कर रहा है। भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। और धनी आदमी है वो तो बेचारा पहले से ही भक्त होता है, और तो चीज उस गरीब आदमी है, उसके पास प्रेम करने का और तो कोई है ही नहीं, इसलिए उसके ऊपर भगवान की यूं कृपा है कि सीधे ही भगवान से प्रेम करता है। और धनी आदमी यदि धन आदि में प्रेम न करे, सीधा ही भगवान से प्रेम करे, तो भगवान का वो दिल जीत लेता है। गृहे सुदारे सुसुते सुबंधुसु, घर में स्त्री में पुत्र में भाई बंधुओं में और उत्तम उत्तम घोड़ों में और रथों में और अक्षय रत्नों में, जिसका किसी प्रकार से मन नहीं जाता था और भगवान के चरणारविंदों में जिसका मन जाता था, ऐसे अम्बरीश की सेवा में भगवान ने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया कि भैया इनकी सेवा करो, तुम हमारे पास तो हम बुलावे तब आना, इनके पास रहो इनकी सेवा करो। अम्बरीश को ये पता ही नहीं कि मेरी सेवा में कोई भगवान ने अपना आयु दे रखा है। हम यदि भगवान की तरफ चलते हैं तो कैसे कैसे भगवान हमारा प्रबंध करते हैं वो अपने को पता नहीं है। ये ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं तो हमको विश्वास होना चाहिए कि भगवान जितनी हमारी रक्षा करते हैं, दूसरा रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। प्रीतो भृत्याभिरक्षणम, भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, अपने सेवक की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। एक बार की बात है, उन्होंने द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का अनुष्ठान एक साल से किया, माने बाद द्वादशी की जब घड़ियां आती हैं तभी व्रत की पारणा करें और एकादशी को कुछ भी न लें। इस प्रकार की जो उनकी ये परंपरा थी, इस प्रकार से उन्होंने जो अनुष्ठान किया था, एक साल का किया था, तो कार्तिक से ही ये प्रारंभ हुई और कार्तिक में ही आकर के ये समाप्त होने वाली थी। तो जब ये उद्यापन करने के लिए उद्यत हुए तो तीन रात्रि तक उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं और यमुना नदी के किनारे गए, मधुवन में रहे, भगवान की पूजा करते रहे, भगवान का खूब अभिषेक किया और बड़ी बड़ी संपत्तियों से दान आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, गायें उनको दान में दी और इस प्रकार से 60 करोड़ उन्होंने गायें दान में दे दी। और अब एकादशी बीत गई और द्वादशी की घड़ियां लग गई। जब वो द्वादशी की घड़ियां लग गई और पारणाय उपचक्र में और वे पारणा करने की तैयारी में लग ही रहे थे कि इतने में ही दुर्वासा भगवान वहां आ गए। दुर्वासा जी आए तो अपने आसन से खड़े हो गए, दो दुर्वासा जी का सत्कार किया, महाराज आज तो मेरा सारा अनुष्ठान फलीभूत हो गया, आप जैसे महात्मा हमारे यहां पधार गए। दुर्वासा जी ने कहा कि भाई कल हमारा एकादशी का व्रत था और हम तुम्हारे यहीं आके पारणा करेंगे, पहले हम यमुना जी में जाकर स्नान कर आते हैं, कि बड़ी अच्छी बात है। वे अपने शिष्यों के साथ में चले गए दुर्वासा जी और मूर्तार्धावशिष्टायाम वहां तो वे गए। और इतने में एक द्वादशी का जो समय था वो बीत रहा था, आधा मूर्ति बाकी रहा, वो आए नहीं दुर्वासा जी स्नान करके। अब विचार किया, पंडितों को बुलाया कि क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, वो भी कल के एकादशी किए हुए हैं, पहले ब्राह्मण को पारणा करावे उसके बाद हम करें। और दूसरी बात यह है कि अब एक साल से हमारा अनुष्ठान वो द्वादशी की घड़ी में ही पूरा होना चाहिए, द्वादशी की घड़ी अभी थोड़ी सी रह गई, ब्राह्मण देवता आए नहीं, क्या करना चाहिए। तब सबके मन में संदेह हो गया क्या करें। इतने में उन्होंने स्वयं ने निर्णय दे दिया कि अच्छा ऐसी बात, हम जल पी लेते हैं, जल पी लेते हैं तो उससे व्रत पारणम, व्रत की व्रत का पारणा भी हो जाएगा, क्योंकि जल ऐसी चीज है कि जो भोजन करने में भी आ जाता है और भोजन नहीं करने में भी आ जाता है, अशितम नाशितम तथा। यह अच्छी बात है, उन्होंने जल ले लिया, जल ले लिया। और इधर तत्काल थोड़ी देर में दुर्वासा ऋषि आ गए। जब वो दुर्वासा ऋषि नित्यनेम वगैरह पूरा करके वहां आए तो दुर्वासा ऋषि जान गए कि इन्होंने जल पी करके पारणा पूरा कर लिया है। इतने में दुर्वासा ऋषि तो बिगड़ गए, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया सबके बीच में। दुर्वासा ऋषि उनको फटकारने लगे, शरीर उनका कांप रहा है, आंखें उनकी फटी हुई है, भ्रिकुटी तन गई है, भूखे तो थे ही, एक तो भूख में यूं ही थोड़ी बात में बात आ जाती है। कभी भी किसी आदमी से कोई काम निकालना हो, बात करनी और भोजन का समय हो ना, उस समय में नहीं जाना चाहिए, पहले वो भोजन कर ले, उसके बाद ही उसके पास जाना चाहिए। तो अब बुभुक्षितस्य, भूखे थे ही और हाथ जोड़े हुए बेचारे अम्बरीश वहां खड़े थे कि महाराज जल्दी आप भोजन कर लो। अब वो दुखी हो, वो क्रोध में आकर के दुर्वासा ऋषि फटकारने लगे कि ओहो, बड़ा तू ब्राह्मणों का भक्त आया है, ये इतनी बड़ी राजलक्ष्मी मिल गई ना, इस कारण से तू घमंड करता है, हमारे आने से पहले तुझे पारणा करने का क्या अधिकार था, तुम अपने आप को विष्णु का भक्त मानते हो और अपने को बहुत बड़ा मान रहे हो, हमारे जैसे अतिथि का आतिथ्य पूरा किया ही नहीं और हमको भोजन कराया नहीं, उससे पहले क्यों तुमने जल पी लिया, आज मैं तुझे अपने इस काम कार्य का फल देकर के ही रहूंगा। इस प्रकार से कह करके उन्होंने अपनी जटा को बिखेरा और उसमें से एक बाल को उखाड़ करके और उसको कृत्या बना दी। अब वो कृत्या बना करके कहा अम्बरीश को जला डालो। अब वो आग का स्वरूप सामने आया भाई, काराल अलोपमाम, काला नल है माने कालाग्नि उनके सामने आ गई। अब वो कालाग्नि सामने आई तो वो जोर से जो ही अम्बरीश की तरफ लपकी, अम्बरीश शांत खड़े थे, इतने में सुदर्शन चक्र आया सामने। सुदर्शन चक्र आकर के उसने उस कृत्या को वहीं पर पूरा कर दिया और सुदर्शन चक्र को तो आज्ञा थी कि जो अम्बरीश को कष्ट पहुंचावे उसकी खबर लेना तुम्हारा काम है। अब वो सुदर्शन चक्र था, वो चक्र दौड़ा दौड़ा गया दुर्वासा ऋषि की तरफ, दुर्वासा ऋषि की तरफ गया। दुर्वासा ऋषि पीछे सिर के, ये क्या चीज आ गई, आज तक हमने जहां भी क्रोध किया है हमारा क्रोध सफल हो गया, हमारा क्रोध विफल हुआ ये तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको ही मारने के लिए आ रहा है ये चक्र तो। आप तो दुर्वासा बड़े डरे, दुद्रवे भागने लगे, प्राण बचाने के लिए बहुत इधर उधर गए। उन्होंने देखा कि तो और कुछ नहीं है, तो सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र हमको मारने के लिए आ गया। तो मुनि इधर उधर देख करके सुमेरु पर्वत पर गए, वहां की कंदराओं में गए, दिशाओं में गए, आकाश में गए, पृथ्वी पर गए, समुद्र में गए, सब जगह गए, जहां जहां गए वहां अपने पास में उन्होंने सुदर्शन चक्र को देखा। और कहीं नहीं कर तो दौड़े 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 ब्रह्म लोक में गए, ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी सुदर्शन चक्र से हमको बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा दुर्वासा जी जल्दी मेरे लोक से निकल जाओ तो मेरा लोक भस्म हो जाएगा, आपको मालूम है मेरी खुद की उम्र भी बंधी हुई है, मैं स्वयं अपने हिसाब से 100 वर्ष तक यहां रहता हूं, उसके बाद मेरा भी पता नहीं चलता है, तो मैं हूं शंकर है, दक्ष है, भृगु है, ये सब के सब जिनकी कृपा से यहां जी रहे हैं उनसे बैर विरोध लेना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम और कहीं चले जाओ। दुर्वासा ऋषि वहां से भगे 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 आए कैलाश पर कि बाबा शंकर मेरी रक्षा करो, आपकी शरण में हूं, सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। शंकर भगवान ने कहा देखो ये कैलाश पर्वत ऐसा है ऋषि, यहां तो बहुत ऋषि मुनि रह रहे हैं, आज तक मैंने ये नहीं कहा किसी को कि तुम यहां आए हो तो यहां से चले जाओ, आज मुझे दुखी होकर पहली बार कहना पड़ रहा है दुर्वासा ऋषि तुम्हारे लिए यहां कोई स्थान नहीं है। वयम नतात प्रभवामि भूमि यस्मिन परेण्य प्यज जीव कोशा, न जाने हमारे जिसे कितने जीव उनके अंदर रह रहे हैं, ऐसे परमात्मा से भगवान विष्णु से विरोध करके और हम आपको आश्रय देवे ये बात उचित नहीं है। आप देखो मैं आपको सच्ची सलाह देता हूं दुर्वासा जी, आप सनत कुमार के पास चले जाएंगे वो भी शरण नहीं देगा, नारद के पास चले जाओ, कपिल के पास चले जाओ, देवल के पास चले जाओ, मरीचि के पास चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, कोई शरण नहीं दे सकता, क्योंकि हम तो खुद किसी की शरण चाहते हैं, इसलिए हम तुमको कैसे शरण देवे और उससे भयभीत हुए को हम शरण दे दे, हमारे बस की बात नहीं है। मेरी बात मानते हो तो एक उपाय है, तुम बैकुंठ में चले जाओ, उसी के ही जाकर पैर पकड़ लो, भगवान विष्णु के ही चरण पकड़ लो, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है। इधर उधर भटकने में समय मत लगाओ। दुर्वासा ऋषि गए सीधे बैकुंठ में। उस समय देखा भगवान तो आप विराजमान है अपने आसन पर, और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी स्तुति में लगे हुए हैं। ऐसे बीच में दुर्वासा ऋषि भगे भगे गए और जाते ही उनके चरणों में जाकर पसर गए, दंडवत प्रणाम करने लगे, बोलिए आनंद कंद भगवान, और कहा महाराज मेरे द्वारा आज बड़ा भारी अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैंने आपका प्रभाव जाना नहीं था, आपके भक्तों का प्रभाव मैंने जाना नहीं था, महाराज अब कृपा करो, मेरे अपराध को आप चाट जाओ और जैसे तैसे मेरे पर कृपा करो। महाराज विदेही तस्यापचितिम विधातर मुच्चित यन्नाम न्युदिते नारकोपी, हमने सुना है कि आपका कोई नारायण नारायण नाम ले लेता है तो नरकों से वो छूट जाता है, महाराज आप साक्षात मेरे सामने विराजमान हो, मुझे मेरे पापों से अब छुड़ाओ और मुझे अपनी शरण में ले लो, सुदर्शन चक्र को शांत करो। भगवान ने अब उत्तर दिया है भाई, भगवान कहते हैं दुर्वासा जी कोई आदमी स्वयं बंधा हुआ हो वो दूसरे का बंधन खोल सकता है क्या? जो स्वयं पराधीन हो वो दूसरे को स्वतंत्र कर सकता है क्या? जो स्वयं किसी की कठपुतली होकर नाचता हो वो अपने स्वतंत्रता से नाच सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो खुद खाली हूं, मैं तो खुद भक्तों का गुलाम हूं, भक्त जैसा कहते हैं वैसा मैं करता हूं, तुमको तो दिखता है कि बैकुंठनाथ है लेकिन मैं भक्त भक्तिमान, मेरे आराध्य भक्त हैं, मैं उनके अधीन रहता हूं, और उन संतों ने महात्माओं ने मुझे कैद कर रखा है, उनके हृदय के अंदर मैं बैठा रहता हूं, कैद खाने में जैसे कैदी बैठता है ऐसे, इसलिए मैं स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी आप मेरे पास आए तो हैं लेकिन आपको यहां से खाली हाथ लौटना पड़ेगा, आप मेरे और भक्तों के बीच में जो रिश्ता है जरा उसको आप सुन ले, आपको ज्ञान होगा कि भक्तों का हृदय कैसा होता है। अरे जिसने भक्त को देख लिया है और भक्त को जान लिया है वो मुझे जान लेगा, और जो मुझे जान लेगा उसको भक्तों का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं संतों से महात्माओं से बहुत प्रेम करता हूं। नारद दुर्वासा जी आज आपने अपराध के लिए साफ साफ बात मुझसे कही है तो मैं भी आपको साफ साफ बात कह देता हूं, जब मैं यहां बैकुंठ में रहता हूं तो मेरा चित्त नहीं लगता है, न मुझे बैकुंठ प्यारा है और न मुझे लक्ष्मी प्यारी है, मुझे उन भक्तों की बराबर याद आती है जो बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
श्री कृष्ण गोविंद हरे
करते हैं उनकी बराबर याद आती है, और मैं उनसे मिलने के लिए लालायित रहता हूं। दुर्वासा जी मैं उनके एहसान को कैसे चुकाऊं कि जो अपने स्त्री से पुत्र से धन से घर से मकान से परिवार से सबसे प्रेम हटाकर वो लोगों से बात सुनकर के सीधा मेरे से प्रेम करने लग जाते हैं, बताओ ऐसे भक्तों की मैं कैसे उपेक्षा कर सकता हूं। लोग तो कहते हैं कि मैं प्रेम करता हूं, मैं क्या प्रेम करता हूं, प्रेम तो मेरे भक्त लोग करते हैं। मेरे लिए तो भक्तों के अलावा कोई दूसरा प्रेम पात्र नहीं है। भक्तों के सामने तो तरह तरह की चीजें हैं, उनके पास कुटुंब भी है, मेरा तो कोई कुटुंब नहीं। उनके पास माँ बाप भी है, मेरे कोई माँ बाप नहीं, क्यों, मैं किसी से पैदा होता नहीं। उनके पास भोक्तृत्व की बुद्धि है, इसलिए भोगने की चीजें हैं, मेरे में भोक्तृत्व नहीं है तो भोगने की चीजें भी मेरे पास नहीं है। मैं अकिंचन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो तो किसी के साथ प्रेम कर ले वे आश्चर्य की बात नहीं, पर मेरे भक्तों के पास रुपया है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, मणि माणिक्य है, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, बंधु है और माता है, पिता है, न जाने कितनों से प्रेम करके अपनी जिंदगी चला सकते हैं, लेकिन उन सब से प्रेम हटाकर जो मुझसे ही प्रेम करते हैं, ऐसे भक्त मेरे पर कितना एहसान करते हैं दुर्वासा मैं बता नहीं सकता हूं। मई दीर्बद्ध हृदय, उन्होंने अपना हृदय हमको दे दिया है, जो समदर्शी होते हैं, मैं क्या बताऊं, ऐसे भक्तों के मैं वश में होता हूं और ऐसे भक्तों के नाच के नचाने से मैं नाचता हूं। सच्चिया पर नाच पे नाच नचावे, हम उनके द्वारा नाचने लग जाते हैं। मेरी सेवा करने पर यदि उनको सालों के साष्ट सामीप्य सायुज्यमेकत्वमप्युत, माने ये चार प्रकार की मुक्ति भी उनको हम देवे तो भी वो न इच्छन्ति, वो कहते हमको मुक्ति नहीं चाहिए। मुगति निरादरी भगति लुभाने, वो कहते हम तो आपसे प्रेम करना चाहते हैं। हम कहें अरे और तो कुछ मांगो, नहीं और कुछ नहीं लेते, हम तो आपसे प्रेम ही लेंगे। अब ऐसे प्रेमियों के सामने मैं केवल आंखों में जल लिए रो सकता हूं और क्या कर सकता हूं बताओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। साधु संत महात्मा ये मेरे हृदय हैं और मैं इनका हृदय हूं, ये मेरे अलावा किसी को भी नहीं देखते, सब जगह मुझे ही मुझे देखते हैं। तो मेरी भी लालसा यही रहती है कि मैं भी सब जगह अपने भक्तों ही भक्तों को देखूं। दुर्वासा जी, आपने अपराध तो ऐसा किया है कि आपको क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने उस अपराध के बीच में एक ऐसा पवित्र काम कर लिया है, इस कारण से मैं तो आपको दंड नहीं दे सकता हूं, आपको एक उपाय बता सकता हूं। अपराध तो यह है कि आप अम्बरीश को मारने लगे, लेकिन इसके द्वारा आपका एक बड़ा भारी अनुष्ठान ये हो गया कि आप मेरे भक्त के दर्शन किए हुए यहां बैकुंठ में आ गए, नहीं तो हमारे आने का आपका कोई कारण नहीं हो सकता। आप उस अम्बरीश के दर्शन करके यहां आए हो, अब हम आपको एक उपाय बता देते, आप इस दृष्टि से उपाय सुनने के अधिकारी हो, आप यहां से सीधे अम्बरीश जी के पास चले जाओ और अम्बरीश से माफी मांग लो, क्षमा मांग लो, हे दुर्वासा जी आपका सब अपराध भी समाप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति तपो विद्या च विप्राणाम, तपस्या और विद्या ये ब्राह्मणों के कल्याण के लिए होते हैं, लेकिन उन ब्राह्मणों में यदि कोई दुर्विनीत निकल जाए तो यही तपस्या और विद्या उसके लिए फंसने का कारण भी बन जाता है। इसलिए आप तो नाभाग नंदन अम्बरीश के पास जाओ और क्षमा मांग लो और उससे आपको शांति मिलेगी। दुर्वासा ऋषि बैकुंठ से दौड़े 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 उस बाहिष्मती नगरी में आए और आते ही आव देखे न ताव देखे, उन्होंने जाकर अम्बरीश के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़े तो अम्बरीश उस समय में बड़े लज्जित हुए कि महाराज आप ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूं, यह उल्टी बात कहा। दुर्वासा कहने लगे क्या बताऊं, मैं आज भूल गया हूं कि तुम क्षत्रिय और मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो एक ही बात जानता हूं कि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और भक्ति ही हमें करनी चाहिए, जाति पाति मेरे याद ही नहीं रही है, अब मुझे माफ कर दो तुम।